क्या कभी ऐसा होता है कि हम रात के घने अंधेरे में कमरे से गुजर रहे हो
और अचानक पैर किसी चीज से टकरा जाए?
बिल्कुल, पलंग के किनारे से या किसी भारी कुर्सी से बहुत जोर से टकरा जाए, और उस भयंकर दर्द के बीच जब हम अपना पैर पकड़कर बैठे होते हैं तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है?
यही कि मैंने ऐसा क्या किया था।
हाँ, हम अक्सर तुरंत सोचते हैं, यार मैंने ऐसा क्या बुरा किया था जो मेरे साथ ठीक इसी वक्त ही हुआ। मतलब दर्द के उस छोटे से पल में हम अचानक अपने पिछले हफ्ते के या शायद पिछले कई सालों के कर्मों का हिसाब किताब करने लगते हैं। हम किसी ऐसे काम को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से हमें ये सजा मिली है।
सही कहा, ये इंसानी फितरत का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। हम अनजाने में ही हर घटना के पीछे एक तार्किक कारण ढूंढते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें दर्द हो रहा है तो निश्चित रूप से हमने कोई नियम तोड़ा होगा। मतलब ये एक स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है जो हमें ये एहसास दिलाती है कि दुनिया एक तय तरीके से चलती है और कुछ भी अकारण नहीं होता।
और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये कोई नई सोच नहीं है। मतलब जब मैं हाल ही में बुक ऑफ जॉब और उसके पीछे के दार्शनिक आधार के बारे में डॉक्टर जॉन वॉल्टन के नोट्स पढ़ रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि हमारी ये पैर टकराने वाली सोच
हजारों साल पुरानी है।
हाँ, दरअसल ये एक बहुत ही गहरी धार्मिक और दार्शनिक पद्धति का हिस्सा है।
आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी जटिल विषय पर बात करने वाले हैं।
बिल्कुल,
हमारा मकसद उस पुराने लेकिन आज भी प्रासंगिक सवाल को खंगालना है जो सदियों से इंसान को परेशान करता आ रहा है, और वो सवाल है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है।
डॉक्टर वॉल्टन अपने व्याख्यान में इस पूरी पहेली को बहुत ही बेहतरीन तरीके से खोलते हैं। वे बताते हैं कि प्राचीन विचारधाराएं सवाल से कैसे निपटती थीं।
और कैसे एक बहुत ही पुरानी किताब मतलब बुक ऑफ जॉब हमें हमारे आज के दुखों और संघर्षों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे सकती है। इस चर्चा के केंद्र में एक बहुत ही खास सिद्धांत है जो हमारी पूरी सोच की नींव है।
तो चलिए इस नींव को ही पहले समझते हैं। हम अक्सर मानते हैं कि दुनिया में एक अदृश्य तराजू काम कर रहा है। डॉक्टर वॉल्टन की रिसर्च में इस सोच को रिट्रीब्यूशन प्रिंसिपल या प्रतिफल का सिद्धांत कहा गया है।
प्रतिफल का सिद्धांत।
इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर इंसान धार्मिक है, अच्छे काम कर रहा है, तो वो हमेशा समृद्ध रहेगा, उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, और जो लोग बुरे हैं वो दुख भोगेंगे।
बिल्कुल, ये एक बहुत ही साधारण सा गणित लगता है। मतलब इंसान को वही मिलता है जिसका वो हकदार होता है।
सही बात है।
और ये सिद्धांत हमें एक मानसिक शांति देता है। हम सब चाहते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया एक तय नियम से चले, जहां अव्यवस्था या केओस के लिए कोई जगह ना हो। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब हम इस सिद्धांत को पलट कर देखना शुरू करते हैं।
पलट कर देखने का मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान दुख झेल रहा है तो इस गणित के हिसाब से उसने जरूर कुछ ना कुछ बुरा किया ही होगा।
सटीक रूप से यही। प्राचीन काल से लेकर आज तक लोग अपनी या दूसरों की खराब परिस्थितियों को सीधे तौर पर ईश्वर की नाराजगी से जोड़कर देखते आए हैं।
अरे बाप रे।
हाँ, अगर आपके खेत में फसल खराब हो गई या आपको कोई गंभीर बीमारी हो गई तो समाज तुरंत ही मान लेता था कि आपने कोई ऐसा पाप किया है जिसकी सजा आपको मिल रही है। ये रिट्रीब्यूशन प्रिंसिपल की एक बहुत ही खतरनाक और कठोर व्याख्या है।
रुको, अगर हम इस बात को गहराई से सोचें, ये पूरा का पूरा सिस्टम ही एक कॉस्मिक वेंडिंग मशीन की तरह लगने लगता है।
कॉस्मिक वेंडिंग मशीन?
हाँ, मतलब हम ईश्वर को एक ऐसी वेंडिंग मशीन मान रहे हैं जिसमें एक अच्छे काम का सिक्का डालो, एक प्रार्थना का सिक्का डालो, और बदले में नीचे से एक अच्छी, सुखी और सुरक्षित जिंदगी का पैकेट बाहर आ जाता है।
बिल्कुल, ये उदाहरण बहुत सटीक है।
लेकिन क्या होता है जब हम सिक्का डालते हैं और मशीन उसे खा जाती है? मतलब जब हमें बदले में कुछ नहीं मिलता या अचानक से कोई ऐसी मुसीबत हमारे ऊपर गिर पड़ती है जिसके हम बिल्कुल भी हकदार नहीं थे, तब तो हमारा पूरा विश्वास ही हिल जाएगा ना।
हाँ, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे हम ईश्वर के न्याय को एक व्यवस्था या सिस्टम में बांधने की कोशिश करते हैं। हम इंसान हर चीज पर नियंत्रण चाहते हैं। अगर हम मानते हैं कि हमारे अच्छे कर्म हमें हर मुसीबत से बचाएंगे तो एक तरह से हम ईश्वर को भी अपने बनाए हुए नियम से बांध रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ईश्वर की कार्यप्रणाली की भविष्यवाणी की जा सके,
जो कि मुमकिन नहीं है।
बिल्कुल, पर डॉक्टर वॉल्टन कहते हैं कि जब ये व्यवस्था काम नहीं करती, जब बिना किसी कारण के भयंकर पीड़ा आती है, तब इंसान के विश्वास की असली और सबसे कठिन परीक्षा होती है।
और मुझे लगता है कि यहीं पर ये पूरी बहस एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। मान लीजिए ये वेंडिंग मशीन हमेशा 100% सही काम करती है।
अच्छा, मान लिया।
तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि लोग सिर्फ उस इनाम के लिए, उस सुरक्षित जिंदगी के लिए अच्छे काम करेंगे? क्या वे सही मायने में निस्वार्थ भाव से अच्छे होंगे या सिर्फ लालच में?
ये एक बहुत ही गहरा सवाल है।
मैंने डॉक्टर वॉल्टन के नोट्स में पढ़ा कि एक चैलेंजर या चुनौती देने वाले किरदार का जिक्र है, जो ठीक इसी बिंदु पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है।
हाँ, चैलेंजर इस पूरी व्यवस्था की नींव पर ही प्रहार करता है। उसका तर्क बहुत ही तीखा और विचारणीय है। वो कहता है कि अगर रिट्रीब्यूशन प्रिंसिपल हमेशा काम करेगा, यानी अच्छे लोगों को हमेशा फायदा ही फायदा होगा, तो दुनिया में सच्ची धार्मिकता या सच्ची नेकी कभी पनप ही नहीं सकती।
मतलब लोग सिर्फ मतलब से अच्छे बनेंगे?
बिल्कुल, लोग सिर्फ इसलिए अच्छे बनेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि इसका नतीजा समृद्धि है। वो ईश्वर से प्रेम नहीं करेंगे, बल्कि ईश्वर से मिलने वाले फायदों से प्रेम करेंगे।
अरे, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी को हर दिन स्वस्थ खाना खाने के लिए खूब सारे पैसे दें।
हाँ, थोड़े समय बाद वो क्या करेगा?
वो इंसान अपनी सेहत के कारण वो खाना नहीं खा रहा होगा, बल्कि उन पैसों के लालच में खा रहा होगा। क्या इनाम का ये पक्का वादा हमारी सच्ची नीयत को अंदर ही अंदर पूरी तरह खत्म नहीं कर देता? चैलेंजर की ये बात तो बहुत हद तक सही लगती है।
यही इस कहानी का एक बहुत बड़ा दार्शनिक मोड़ है। चैलेंजर ईश्वर के न्याय के इस सिस्टम पर सीधा निशाना साध रहा है। वो पूछ रहा है कि क्या दुनिया में कोई एक भी इंसान ऐसा है जो बिना किसी फायदे, बिना किसी स्वार्थ के सही काम कर सकता है? और दूसरी तरफ हमारे पास जॉब की स्थिति है जो पूरी तरह से अलग दुविधा में फंसा है।
जॉब यानी अय्यूब?
हाँ, जॉब जानता है कि उसने कोई पाप नहीं किया है, फिर भी वो एक के बाद एक भयंकर दुखों का सामना कर रहा है।
तो जॉब के लिए समस्या ये है कि वो रिट्रीब्यूशन प्रिंसिपल को मानता है, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी में ये नियम पूरी तरह से फेल हो रहा है।
बिल्कुल, जॉब का तर्क ये है कि अगर अच्छे लोग बिना किसी गलती के दुख झेल रहे हैं और रिट्रीब्यूशन प्रिंसिपल काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि ईश्वर का न्याय ही गलत है।
बाप रे, वो ईश्वर को कटघड़े में खड़ा कर देता है।
हाँ, एक तरफ चैलेंजर है जो कहता है कि अगर नियम काम करेगा तो सच्ची नेकी नहीं बचेगी। दूसरी तरफ जॉब है जो कहता है कि अगर नियम काम नहीं कर रहा तो ईश्वर का न्याय संदेह के घेरे में है।
इन दोनों ही नजरियों के बीच का ये टकराव बहुत ही उलझा हुआ है। इसे समझने के लिए मैंने नोट्स में देखा कि डॉक्टर वॉल्टन ने एक बहुत ही बेहतरीन विजुअल इमेज का इस्तेमाल किया है। वे इसे दावों का त्रिकोण कहते हैं।
दावों का त्रिकोण? हाँ।
अगर हम इस त्रिकोण के 3 कोनों को देखें तो ये पूरी बहस शीशे की तरह साफ हो जाती है।
हाँ, ये त्रिकोण इस पूरी दार्शनिक पहेली को बहुत अच्छी तरह से समझाता है। चलिए इसके 3 कोनों पर नजर डालते हैं। पहला कोना है, रिट्रीब्यूशन प्रिंसिपल हमेशा सच होता है।
मतलब अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा।
बिल्कुल। दूसरा कोना है, जॉब एक पूरी तरह से धार्मिक, सच्चा और निर्दोष इंसान है। और तीसरा कोना है, ईश्वर हमेशा न्यायपूर्ण है, वो कभी कुछ गलत नहीं करता।
तो जब तक जॉब की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो अमीर था, उसका परिवार सुखी था, तब तक ये त्रिकोण बहुत आराम से काम कर रहा था।
हाँ, कोई दिक्कत नहीं।
ये 3 बातें एक साथ सच साबित हो रही थी।
हाँ।
लेकिन जैसे ही उसकी जिंदगी में अचानक से भयंकर दुख आता है, उसकी संपत्ति छिन जाती है, सब कुछ तबाह हो जाता है, तो ये त्रिकोण अचानक टूट जाता है। अब इन 3 बातों को एक साथ सच माना ही नहीं जा सकता,
क्योंकि अगर जॉब निर्दोष है और ईश्वर न्यायपूर्ण है तो फिर दुख क्यों आया? इसका मतलब रिट्रीब्यूशन प्रिंसिपल गलत है। या अगर नियम सही है और ईश्वर न्यायपूर्ण है तो जॉब निर्दोष नहीं हो सकता?
मुझे तो ये बिल्कुल म्यूजिकल चेयर्स के खेल जैसा लगता है। जब तक संगीत बज रहा है, मतलब जब तक जिंदगी में सुख है, तब तक सब मजे में गोल गोल घूम रहे हैं।
हाँ?
हमारे पास 3 विश्वास हैं, पर कुर्सियां सिर्फ 2 ही हैं। जब अचानक त्रासदी आती है और वो संगीत रुक जाता है तो भारी अफरा तफरी मचती है। अब 3 बातों के लिए जगह नहीं है, किसी न किसी एक बात को तो खेल से बाहर निकालना ही पड़ेगा।
ये तुलना बहुत सटीक है। जब दुख का पहाड़ टूटता है तो हम एक साथ ये नहीं मान सकते कि नियम भी सही है, इंसान भी निर्दोष है और ईश्वर भी न्यायपूर्ण है। इनमें से किसी एक को तो झूठा होना ही पड़ेगा।
बिल्कुल।
और यहीं से इस पूरी कहानी के अलग अलग किरदार अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से उस एक विश्वास को खेल से बाहर निकालने लगते हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि इंसान अपने सदियों पुराने सिस्टम को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है।
चलिए देखते हैं कि जब मुसीबत आती है तो जॉब के जो 3 दोस्त उसे सांत्वना देने आते हैं, वे किन दो कोनों को चुनते हैं?
हाँ, वो क्या करते हैं?
और डॉक्टर वॉल्टन बताते हैं कि वे अपनी सहूलियत के लिए रिट्रीब्यूशन प्रिंसिपल और ईश्वर के न्याय, इन दो कोनों पर अपना मजबूत किला बना लेते हैं। वे इन दो बातों को छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है।
और अपनी उन दो कुर्सियों को बचाने का नतीजा क्या होता है? चूंकि जगह सिर्फ दो की है, जो आपके दोस्तों को उस तीसरे कोने को बेदर्दी से बाहर निकालना पड़ता है, और वो तीसरा कोना है खुद जॉब की धार्मिकता या उसका निर्दोष होना।
मतलब उन्होंने दोस्त को ही निकाल दिया?
हाँ, दोस्तों का मन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उनके जीवन भर का विश्वास गलत हो सकता है, इसलिए वे सीधा सा निष्कर्ष निकालते हैं कि क्योंकि नियम हमेशा सच होता है और ईश्वर हमेशा न्याय करता है, इसलिए जॉब ने पक्का कोई बहुत बड़ा भयानक पाप किया होगा
जिसे वो सबसे छुपा रहा है। मुझे सोचकर इस हैरान होती है, मतलब अपनी उस वेंडिंग मशीन वाली सोच और अपने सिस्टम को बचाने के लिए उन्होंने अपने ही सबसे करीबी दोस्त को पापी और झूठा घोषित कर दिया।
बिल्कुल,
एक नियम को बचाने के लिए इंसानियत और दोस्ती को ही दांव पर लगा दिया गया। ये दिखाता है कि हम अपने बनाए गए सिद्धांतों से कितने बुरी तरह चिपके रहते हैं। लेकिन अगर हम जॉब की तरफ देखें तो उसका चुनाव भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।
जॉब की स्थिति बहुत दयनीय और जटिल है। जॉब जानता है कि उसने कोई पाप नहीं किया है, वो अपने निर्दोष होने के कोने पर मजबूती से खड़ा है। लेकिन विडंबना ये है कि वो भी उसी पुराने रिट्रीब्यूशन प्रिंसिपल को ही मानता है कि बुरे के साथ ही बुरा होता है। अब चूंकि वो सही है और नियम भी सही है, तो फिर दुख देने वाला ईश्वर अन्यायपूर्ण लगने लगता है।
ओहो, इसलिए जॉब धीरे धीरे ईश्वर पर ही आक्षेप करने लगता है। वो ईश्वर से बहस करना चाहता है, उन पर सवाल उठाता है कि तुमने मेरे साथ यह अन्याय क्यों किया।
हाँ, जो कि बहुत भयानक है।
ये सच में एक भयानक स्थिति है, जहाँ एक कठोर नियम के कारण दोस्त अपने ही दर्द में डूबे दोस्त के खिलाफ हो गए और एक सच्चा भक्त अपने ही ईश्वर के खिलाफ हो गया। पूरा का पूरा ढांचा ही चरमरा गया है।
और जब ये त्रिकोण पूरी तरह टूट चुका होता है और सब लोग अपने अपने कोनों पर अड़े होते हैं, तभी कहानी में एक नया और बहुत ही दिलचस्प किरदार आता है, एलिहू।
एलिहू?
हाँ, एलिहू आकर इस पूरे विवाद को एक बिल्कुल ही नया मोड़ देने की कोशिश करता है।
हाँ, मैंने पढ़ा कि एलिहू आकर ईश्वर के न्याय वाले कोने पर अपना किला बनाता है, और वो भी उसी पुराने रिट्रीब्यूशन प्रिंसिपल को सच मानता है। उसे लगता है कि जॉब के दोस्त भी गलत दिशा में जा रहे हैं और जॉब भी गलत है। पर डॉक्टर वॉल्टन के नोट्स में एक बड़ी मजेदार बात लिखी है कि एलिहू यहाँ एक तरह से चीट करता है।
चीट करता है
मतलब वो शब्दों के साथ एक चतुराई भरी बेईमानी करता है। जरा समझाइए, वो कैसी बेईमानी करता है? क्या वो नियम के मतलब को ही अपने हिसाब से मोड़ देता है?
बिल्कुल, एलिहू बहुत ही चालाकी से उस नियम की व्याख्या ही बदल देता है। अभी तक जॉब और उसके दोस्त इस सिद्धांत को एक सजा की तरह देख रहे थे कि अगर आज दुख आ रहा है तो इसका मतलब है कि अतीत में कोई पाप किया गया होगा।
हाँ, यही तो आम सोच है।
लेकिन एलिहू इस सिद्धांत को आने वाले पापों को रोकने का एक तरीका बता देता है।
प्रिवेंटिव?
रुको, मतलब वो कह रहा है कि दुख अतीत की सजा नहीं बल्कि भविष्य का बचाव है।
हाँ।
एलिहू का तर्क है कि दुख का आना जॉब के पुराने पापों की सजा नहीं है, बल्कि जॉब के अंदर धीरे धीरे बढ़ रहे अहंकार और आत्मसंतुष्टि को रोकने के लिए ईश्वर की दी गई एक चेतावनी है।
अच्छा।
वो कहता है कि ईश्वर दुख इसलिए भेज रहा है ताकि जॉब भविष्य में कोई बड़ा पाप ना कर बैठे।
रुको रुको, ये तो बहुत ही अजीब तर्क है। ये तो बिल्कुल उस साइंस फिक्शन फिल्म माइनॉरिटी रिपोर्ट जैसी बात हो गई, जहां पुलिस अपराध होने से पहले ही मुजरिम को पकड़ लेती है।
हाँ, बिल्कुल वैसा ही।
एलिहू कह रहा है कि तुमने अभी तक कोई जुर्म नहीं किया है, पर हमें लगता है कि तुम्हारे अंदर ऐसा करने की पूरी संभावना है, इसलिए ये लो, पहले ही सजा भुगतो। क्या इस तरह अपनी सुविधा के लिए शब्दों और नियमों के मायने बदल देना सही है? ये तो उस त्रिकोण में फंसे रहने का एक और बहाना लग रहा है।
बिल्कुल सही है। डॉक्टर वॉल्टन भी यही स्पष्ट करते हैं कि हालांकि एलिहू बाकी दोस्तों के मुकाबले थोड़ी बेहतर दिशा में सोच रहा था, क्योंकि उसने जॉब के उस अहंकार को पहचान लिया था जो दुख के दौरान बहस करते हुए बाहर आ रहा था, लेकिन अंततः एलिहू भी उसी रिट्रीब्यूशन प्रिंसिपल को ही सब कुछ समझने की भारी गलती कर रहा था। वो भी यह मानकर चल रहा था कि दुनिया का हर दुख सिर्फ और सिर्फ इंसान के कर्मों का ही एक गणितीय परिणाम है,
चाहे वो पिछले कर्मों या आने वाले।
हाँ, वो उस नियम के चंगुल से आजाद नहीं हो पाया, बस उसने नियम का रूप बदल दिया।
इसका मतलब है कि एलिहू का तरीका भी हमें पूरी तरह से इस जाल से बाहर नहीं निकाल पाता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर लोग इस रिट्रीब्यूशन प्रिंसिपल के खोखलेपन से निपटते कैसे हैं?
ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
जब ये नियम काम नहीं करता और इंसान को कोई तार्किक कारण नहीं मिलता तो फिर समाधान क्या बचपा है?
समय समय पर दार्शनिकों और धर्मशास्त्रियों ने इसके अलग अलग समाधान निकालने की कोशिश की है। कुछ विचारकों ने ये माना शुरू कर दिया कि शायद ईश्वर पूरी तरह से न्यायपूर्ण है ही नहीं,
जो कि बहुत ही निराशाजनक है।
दूसरी ओर कुछ लोग ये मानते हैं कि दुख का मुख्य उद्देश्य सजा देना नहीं बल्कि इंसान का चरित्र निर्माण करना है। अगर हम पुराने भजनों या साम्स को देखें तो वहाँ समय पर बहुत जोर दिया गया है।
समय पर?
हाँ।
कैसे?
उनका मानना है कि शायद अभी हमें अन्याय दिख रहा हो लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए क्योंकि ईश्वर अपने सही समय पर अंततः न्याय करेगा। इसके बाद ईसाई धर्म इसमें अनंत काल का एक बहुत बड़ा विचार जोड़ देता है,
इटर्निटी का विचार।
हाँ, कि जो भी पीड़ा हम आज इस छोटे से जीवन में सह रहे हैं वो आने वाले अनंत जीवन के सामने कुछ भी नहीं है और अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा।
लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो ये सभी तरीके कहीं ना कहीं उस त्रिकोण के भीतर ही एक समझौता करने की या जवाब को भविष्य के लिए टालने की कोशिश लगते हैं।
हाँ, एक तरह से।
हम अभी भी एक स्पष्टीकरण ढूंढ रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा नजरिया है जो हमें इस त्रिकोण से, इस वेंडिंग मशीन वाली सोच से पूरी तरह बाहर निकाल सके? डॉक्टर वॉल्टन इस पर क्या कहते हैं?
डॉक्टर वॉल्टन एक बहुत ही गहरा और अलग नजरिया पेश करते हैं। वे समझाते हैं कि हमारी ये दुनिया फॉलन है।
फॉलन मतलब अपूर्ण?
बिल्कुल। इसका अर्थ ये है कि हम एक ऐसी अपूर्ण और पतित दुनिया में रहते हैं जहां सब कुछ एक आदर्श मशीन की तरह व्यवस्थित नहीं है। ये दुनिया क्योस और अव्यवस्था से भरी है। इसलिए हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि यहाँ हर चीज पूर्ण न्याय के सटीक गणित पर ही चलेगी। अगर ईश्वर इस अपूर्ण दुनिया में पूरी तरह से सिर्फ न्याय करने पर उतर आए तो शायद हम में से कोई भी बच नहीं पाएगा।
अरे बाप रे, मतलब न्याय के साथ साथ कुछ और भी होना जरूरी है?
बिल्कुल। ईश्वर के पास सिर्फ न्याय नाम का एक ही हथियार नहीं है, उसके पास प्रेम, दया, करुणा और अनुग्रह जैसे गुणों का एक पूरा समूह है।
तो रिट्रीब्यूशन प्रिंसिपल का क्या?
वो एक कहावत की तरह है। ये बताता है कि आदर्श रूप में आम तौर पर चीजें कैसे काम करनी चाहिए, लेकिन ये इस दुनिया में मौजूद हर दुख का पूर्ण स्पष्टीकरण या थियोडिसी नहीं हो सकता।
थियोडिसी यानी हर दुख के पीछे का सटीक कारण और तर्क ढूंढना। ये तो हम सबकी फितरत है कि जब भी कुछ बुरा होता है हम ईश्वर से या ब्रह्मांड से एक थियोडिसी मांगते हैं। हम कहते हैं, मुझे कारण बताओ कि ये मेरे साथ क्यों हुआ।
और यही डॉक्टर वॉल्टन एक बहुत ही साहसिक बात कहते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि इंसान का हर बात के लिए थियोडिसी मांगना एक तरह से ईश्वर की बुद्धिमत्ता का अपमान करने जैसा है।
अच्छा, अपमान कैसे?
क्योंकि ईश्वर ये नहीं चाहता कि हम अदालत में खड़े किसी वकील की तरह उसका बचाव करें या उसके हर कदम का तार्किक विश्लेषण करें। ईश्वर हमसे बचाव नहीं बल्कि विश्वास चाहता है। वो चाहता है कि जब हमारी समझ बिल्कुल काम न करे, जब चारों तरफ अंधेरा हो, तब भी हम उसकी बुद्धिमत्ता पर भरोसा रखें।
यह विचार सच में बहुत कुछ बदल देता है। हम हमेशा कारण ढूंढने में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम भरोसा करना भूल जाते हैं।
एकदम सही।
लेकिन क्या ये दर्शन सिर्फ पुरानी किताबों या जॉब की कहानी तक ही सीमित है? मैंने पढ़ा कि न्यू टेस्टमेंट में ईसा मसीह इस पूरी बहस को एक बिल्कुल ही नया और क्रांतिकारी रूप देते हैं।
हाँ, ईसा मसीह की शिक्षाएं इस पूरी सोच को जड़ से उखाड़ देती है। वे लोगों का ध्यान कारण से पूरी तरह हटाकर उद्देश्य की ओर ले जाते हैं।
कॉज से हटाकर पर्पस की ओर।
बिल्कुल। इसे समझने के लिए न्यू टेस्टमेंट की एक घटना बहुत महत्वपूर्ण है। जब ईसा मसीह के सामने एक ऐसे व्यक्ति को लाया गया जो जन्म से ही अंधा था, तो उनके शिष्यों ने ठीक वही पुराना थियोडिसी वाला सवाल पूछा जो जोब के दोस्त पूछ रहे थे।
क्या पूछा उन्होंने?
उन्होंने पूछा, किसने पाप किया, इस व्यक्ति ने या इसके माता पिता ने? आप देख सकते हैं कि शिष्य अभी भी उसी पुराने त्रिकोण में फंसे हैं और दुख का कारण ढूंढ रहे हैं।
और मुझे लगता है कि यहीं पर ईसा मसीह ने उस त्रिकोण को पूरी तरह से तोड़ दिया होगा। उन्होंने क्या जवाब दिया?
उन्होंने जवाब दिया, किसी ने नहीं, ये इसलिए हुआ ताकि इसके जरिए ईश्वर की महिमा और उसके काम दिखाई दे सकें।
वाह।
उन्होंने उस व्यक्ति के दुख को किसी अतीत के पाप या कारण से नहीं जोड़ा बल्कि उसे एक आने वाले उद्देश्य से जोड़ दिया। इसी तरह की एक और घटना लूक 13 में मिलती है, जहां एक गिरती हुई मीनार के नीचे दबकर कई लोगों की मौत हो जाती है।
तो वहां क्या हुआ?
वहां भी ईसा मसीह इस त्रासदी को मरने वालों के पिछले जन्म के कर्मों या सजा से जोड़ने से साफ इनकार कर देते हैं। इसके बजाय वे लोगों का ध्यान भविष्य के लिए एक चेतावनी और उद्देश्य की ओर केंद्रित करते हैं। वे अतीत के कारण में उलझने के बजाय भविष्य के उद्देश्य पर फोकस करते हैं।
ये तो मानव मनोविज्ञान के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। हम हमेशा पीछे मुड़कर देखना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि आगे देखो।
हाँ, यही सबसे बड़ी बात है।
आगे का उद्देश्य क्या हो सकता है?
हाँ, जब हम कारण ढूंढना बंद कर देते हैं तभी हम उस परिस्थिति में छिपे हुए उद्देश्य को देख पाते हैं। कारण हमेशा हमें अतीत की जंजीरों में बांधे रखता है, हमारे अंदर अपराध बोध या गुस्सा पैदा करता है,
जो कि बहुत नुकसानदायक है।
जबकि उद्देश्य हमें भविष्य की ओर, एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है।
इस पूरी चर्चा को यहाँ तक समझने के बाद ये देखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि हजारों साल पुरानी ये किताब आज के दौर में हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है।
बिल्कुल,
हम सभी ने अपनी जिंदगी में या अपने करीबियों की जिंदगी में ऐसे दुख देखे हैं जिन्हें समझना या समझाना नामुमकिन सा लगता है। ऐसे समय में हमारा दिमाग तुरंत उस वेंडिंग मशीन वाले तर्क में फंस जाता है और हम खुद को या दूसरों को दोष देने लगते हैं,
जो कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है।
हाँ, लेकिन डॉक्टर वॉल्टन का यह विश्लेषण हमें एक बहुत बड़ी आजादी देता है। यह हमें अपने या दूसरों के दुखों के पीछे का कारण ढूंढने की जिद छोड़ने को कहता है। जब हम उस कारण को ढूंढना बंद कर देते हैं तभी हम उस दुख से बाहर निकलने और उसके उद्देश्य को पाकर आगे बढ़ने के लिए आजाद हो पाते हैं।
और शायद यही इस पूरी लंबी दार्शनिक यात्रा का सबसे बड़ा और खूबसूरत सबक है। यह हमें जीवन की अव्यवस्था और अनिश्चितताओं के बीच एक नया संतुलन खोजना सिखाता है, जहां हम सवालों से ज्यादा विश्वास पर टिके रह सकें।
तो आज की इस गहन चर्चा से विदा लेते हुए जरा इस एक विचार पर गहराई से सोचिए। अगर हम इंसानी दुख को, चाहे वो हमारा हो या किसी और का, पिछले कर्मों का हिसाब किताब मानना पूरी तरह से बंद कर दें, तो आज इसी वक्त किसी मुसीबत के मारे दोस्त को दिलासा देने का हमारा पूरा तरीका ही कितना बदल जाएगा।
बहुत ज्यादा बदल जाएगा।
क्या तब हम अनजाने में उनके दुखों का विश्लेषण करने या उन्हें जज करने के बजाय बस शांति से उनके पास बैठकर सच में उनके सच्चे मददगार नहीं बन जाएंगे?
सच में, जब हम ये मान लेते हैं कि ये दुनिया महज एक कर्मों के गणित का फॉर्मूला नहीं है, तो हमारे अंदर एक बहुत ही गहरी और सच्ची करुणा पैदा होती है।
बिल्कुल, इसलिए अगली बार जब रात के अंधेरे में हमारा पैर किसी कुर्सी या पलंग से टकराएं, तो ब्रह्मांड या ईश्वर से ये पूछने के बजाय कि मैंने क्या पाप किया था, बस थोड़ा सा मरहम लगाइए, गहरी सांस लीजिए और आगे बढ़ जाइए।
सही का,
क्योंकि हर दर्द कोई सजा नहीं होती और हर दुख के पीछे कोई छुपा हुआ पाप नहीं होता। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नए विचारों पर सोचते रहिए और जिंदगी के जटिल सवालों को खंगालते रहिए।